नमस्ते साथियों, जयपुर वाणी और मोबाइल वाणी पर आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम मिलेंगे डॉक्टर हरीश सामरिया सर से, जो कि आपदा प्रबंधन और राहत विभाग में एक सहकर्मी है। हीट वेव और हीट स्ट्रोक के विषय पर तैयारी को लेकर के जानकारी देने के लिए हमें इस कार्यक्रम से वह जुड़े हैं। आइए सुनते हैं सर को।
मेरा नाम डॉक्टर हरीश सामरिया है। मैं जे सीनियर कंसल्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट में हूँ।
जी सर, हमारे जो श्रोता है वो अक्सर ना टीवी, अखबार, रेडियो के माध्यम से मौसम अपडेट को ले लेते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि तापमान की जानकारी है उन तक पहुंचना क्यों जरूरी है, और ये हीट वेव और बढ़ते तापमान के बारे में अवगत रहना उनका क्यों जरूरी है?
इसलिए क्योंकि ये जब भी कभी हीट वेव की प्रॉब्लम्स रहती है, समस्याएं आती हैं, जब भी ये इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आम जन को वहां उस जिले में होने वाली कि हीट वेव से संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, उससे संबंधित पहले तो उनके पास एक अलर्ट का मैसेज जाना चाहिए। उस ऐसे अलर्ट के मैसेज में क्या रहता है, इसके लिए आपदा प्रबंधन सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग जब भी कभी हमें जो भारतीय मौसम विज्ञान है IMD है वहां से जब भी अलर्ट की न्यूज आती है तो हम अपने सचेत ऐप के थ्रू जो आम जन है, जन समुदाय है, उनको ये सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। पहली, दूसरा कि इस जो सूचना गई है उससे संबंध में अब जन समुदाय क्या क्या काम करेगा, क्या क्या कार्रवाई होगी, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हीट वेव से संबंधित क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो ये उनमें जागरूकता का एक भाव होना चाहिए। नहीं, अन्यथा क्या होगा कि अगर हम इस तरह के मैसेज जो भी विभाग के द्वारा जो भी किया जाता है तो हमें परेशानियों का सामना, चक्कर आके कहीं पे भी गिर जाना या चिड़चिड़ापन होना, तेज गर्मी से तनाव महसूस होना, इस तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि जब हीट वेव की कंडीशन कब रहती है, जब हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब हमें IMD से एक मैसेज प्राप्त होता है कि राजस्थान के इन इन जिलों में या अमुक जिलों में आज हीट वेव चलने की संभावना है। इस हीट वेव चलने की संभावनाओं को हम जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाता है विभाग के द्वारा, पहली चीज। अब ये जो चेतावनियां जारी की गई हैं, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आपके शरीर से संबंधित जो जानकारियां हैं, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कहीं पे भी रोड पे चल रहे हैं, आपने पानी की समुचित मात्रा नहीं ली है, या आपका हो सकता है कि आप उस पीक पोजीशन में पहुंच गए हैं जब हीट स्ट्रोक होने की संभावना है, तो आप कहीं पे भी चक्कर आके गिर सकते हैं। तो इन स्थिति में जब आप गिरे नहीं, आप सकुशल रहे जैसा आप चल रहे हैं, इसके संबंध में जो अलर्ट जारी किया जाता है उन पे प्रॉपर काम करने की जरूरत है।
सर, आपको लगता है कि इस बार पिछले साल से ज्यादा तापमान बढ़ा है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है?
इसके पीछे जो कारण रहा है वो ये रहा है कि पहला तो रहा है कि इस समय जो पूरे वर्ल्ड की जो कंडीशन है वो अलनीनो की कंडीशन रही है, ठीक है ना। अलनीनो एक इफेक्ट होता है जो कि साउदर्न अमेरिका के पास वाला जो इलाका है, दक्षिणी अमेरिका के पास वाला इलाका है, वहाँ जो पेरू के तट के पास जो जलधारा होती है, वहाँ गर्म जलधारा की उत्पत्ति हो जाने से अलनीनो इफेक्ट रहता है। उस इफेक्ट का भारतीय मानसून पर, भारतीय जो समुचित जलवायु पद्धति है उस पर भी फर्क पड़ता है। उसका फर्क ये इस बार जो देखा गया है वो ये देखा गया है कि अल नीनो में वृद्धि होने से भारतवर्ष है, इनके यहाँ पे जलवायु में टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है उसका कारण ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसी कारण से बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे मानव के द्वारा जो कृत्य किए गए हैं, जैसे कि हम औद्योगिक जो कारखाने उनसे निकलने वाला धुआं है उनको हम कर रहे हैं, यातायात के साधनों से निकलने वाला जो वातावरण जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उसके द्वारा हो रहा है। इसमें जो मानवकृत कारण है वो भी उतने उत्तरदायी हैं जितना कि नेचुरल कारण है, और आज दिन प्रतिदिन उन कारणों की, इनके मानवकृत कारणों की संख्या में वृद्धि होने से जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है।
जी सर, सर आप हमें ये बता सकते हैं कि इस पर कोई काम किया जा सकता है समुदाय या खुद के लेवल पर? इससे बचाव के लिए कोई तैयारियां भी की जा सकती हैं?
बिल्कुल की जा सकती है। जैसे आप जैसे समुदाय की बात कर रहे हैं, एक समुदाय हम बात कर लेते हैं कि जैसे मिडिल क्लास मैन है, अब उसके जो वर्किंग हावर है या श्रमिक वर्ग है जिनके वर्किंग हावर है, नरेगा में लोग काम कर रहे हैं नहीं, उनके वर्किंग आवर रहता है कि वो दिन के समय काम करेंगे 2 बजे तक रहता है, लेकिन जब हीट वेव की कंडीशन रहती है तो इनके वर्किंग आवर को बदल दिया जाता है, सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक काम करेंगे। तो ये जो वर्किंग बदलने, एक पहली चीज ये करना, दूसरी चीज ये करना कि वहां जो वर्किंग आवर है यह है, वहां ORS का जो पैकेट्स होता है वो समुचित मात्रा में मिल सके, जब भी जरूरत हो कोई भी व्यक्ति ले सके। ऐसी ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं हो कि वो जो ORS का पैकेट है वो उनको वहां आसानी से मिल सके, वो उसको ले सके। तो ये डिपेंड करता है कि हम उन जो जिनकी बात कर रहे हैं कि इनकी जागरूकता के लिए क्या करें, वो अलग अलग रीजन्स के अनुसार, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार कि वो किस टाइप का है, उसके हिसाब से उसमें एक हीट वेव से संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं, हम समुदाय के बीच में जाएं, उनको बताएं कि हीट वेव से क्या क्या परेशानी हो सकती है। हीट वेव के भी बहुत सारे, वो अगर कहीं पे भी घस खा के गिर जाएं, तो आजकल जो राजस्थान में हीट वेव से जो डेथ हुई है उसका कारण क्या रहा है, उसका कारण यही निकल के आया है कि हमने जो प्रबंधन विभाग के द्वारा जिन चेतावनियों को जारी किया है उनको कहीं ना कहीं अवॉइड किया है, और हम उसी कार्रवाई के तहत, जैसे कि हम बात करें कि बाड़मेर में है, बाड़मेर में हीट स्ट्रोक के कुछ केसेस रिफाइनरी वाले इलाके में देखे गए, वो क्यों देखे गए, क्योंकि श्रमिक उसी ही कंडीशन में लगातार काम कर रहे थे। तो वो रीजन एक निकल के आया है कि हम अपने वर्किंग आवर्स को बदलें, हम अपने पानी का जो वहाँ ORS के पैकेट थे उन फैक्ट्रीज में अवेलेबल रहे, ये सारी चीजें रहनी चाहिए।
जी सर, सर मेरा आपसे अगला सवाल है कि लू से बचने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
सबसे पहले तो हम अपने जो शरीर है उस पे हल्के कपड़े पहने, ऐसा डार्क या गहरे कपड़े ना पहने जिससे कि जो सूर्य की आने वाली जो किरणें होती है वो लौट के वापस चली जाए। दूसरा, जितना हो सके हम शरीर को शीतलन रखने के जितने भी उपाय हैं, जिनमें पानी पीना, नींबू पानी पीना, ORS के पैकेट का उपयोग को लेना, ये सारे काम करें। दूसरा हमारे ये है कि जहां तक हो सके हम छायादार स्थानों पर ही अपना वर्क करें दिन के समय, जब हीट वेव की कंडीशन अधिकतम चरम सीमा पर रहती है अपने, उस समय करें। दूसरा कि अगर आपको, किसी भी व्यक्ति को ये महसूस हो कि अब हम हीट वेव की कंडीशन में है, या हीट वेव मतलब हम कहें कि हमें सिर में कुछ चक्कर आ रहे हैं, तो आप प्राइमरी तौर पर जैसे छोटी जो मेडिसिन हैं घर पे ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह करें। फिर भी आपकी अगर तबीयत खराब है तो आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, डॉक्टर्स को दिखाएं, डॉक्टर्स की परामर्श के अनुसार कार्य करें। ये नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर दें और करते रहें, क्योंकि अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम हीट स्ट्रोक के शिकार हो जाएंगे। तो इसको बचने के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने नजदीकी केंद्र पे जाएं, स्वास्थ्य केंद्र पे, और चिकित्सक परामर्श को ध्यान में रखते हुए जो वो परामर्श दे रहे हैं उन पर कार्य करें।
जी सर, सर जैसा कि आपने अभी कहा कि धूप में ना निकले, समुदाय के लोग ऐसे भी हैं जो डेली वेज का काम करते हैं, आमतौर पर वो लोग धूप में ही काम करते हैं और ज्यादातर थड़ी लगा के बैठना, जूते वगैरह सिलना, मतलब ऐसे बहुत सारे काम है जो दिन भर की दिनचर्या में करते हैं, सब्जियां बेचना। तो ऐसे में आप उनको कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं जहां पर वो लू से बचने पर काम कर सके, या दिन में जब वो काम कर रहे तो उस पर थोड़ा ध्यान दे सके?
हाँ, ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपने खुद ने कहा है कि जैसे कि मान लो कोई जूते पॉलिश करने वाला या सब्जी बेचने वाला, जैसे आपने बताया, तो सब्जी बेचने वाला अपने ऊपर एक बड़ा जो अम्ब्रेला आता है छाता, वो लगा सकता है। ऐसे ही जो जूते पॉलिश करने वाला है वो भी इस तरह के कार्य को कर सकता है, क्योंकि अगर सनलाइट डायरेक्ट अगर अपनी बॉडी को टच करेगी तो आपको न केवल हीट स्ट्रोक वरन चर्म रोग भी हो सकते हैं। अगर आप उस पर कुछ भी एक ऐसा पारदर्शी लगाए, जैसे जयपुर में अभी आपने देखा होगा या पूरे राजस्थान में आपने जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर ग्रीन शेड लगाए गए हैं।
जी सर,
क्योंकि टेम्परेचर इतना इंक्रीज रहता है और उस समय टू व्हीलर वाले अगर चल रहे होते हैं तो वो इसलिए लगाया गया है कि आप डायरेक्ट सनलाइट के इफेक्ट में ना आए।
जी सर,
तो उसको रोकने के लिए ये, जैसे अपने अगर हम खुद की सुरक्षा चाहते हैं तो हमको खुद को सुरक्षा करना होगा, तो हम इस तरह के काम कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई भी मान लो आपको सहायता की जरूरत हो तो आप मेडिकल की जो टोल फ्री नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हैं, या आपदा प्रबंधन विभाग के टोल फ्री नंबर है 1070 या 112, इन पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। देखिए, इसमें डिपेंड करता है अपने अपने कार्य क्षमता के अनुसार, जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, अब हम वो काम करते हैं कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे या ठेके प्रथा पे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। उनका काम करने का जो हावर्स होता है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक रहता है। अब वो जहाँ कहीं पे भी काम कर रहे हैं उसमें वो अपने जो भी स्वामित्व है, जो भी स्वामी है, जो भी उस समय का उनका जो किसी मकान का अगर मान लो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहां रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं दिन में सुबह 7 बजे से लेके हम 12 बजे तक काम करेंगे, फिर दिन में 3-4 बजे तक हम रेस्ट करेंगे, 4 बजे बाद देन काम करेंगे शाम को 7 बजे तक। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस तरह से नहीं माने। पहली चीज तो देखिए, क्योंकि खुद अगर हम खुद वर्क कर रहे हैं, अगर हम किसी को बताएंगे कि इस तरह का काम है तो कोई भी आपकी बात को मान जाएगा, क्योंकि जो धूप की तीव्रता वो इतनी ज्यादा रहती है कि उस समय हीट स्ट्रोक से मरने की जो संभावना रहती है वो ज्यादा रहती है। तो उस जो कंडीशन रहती है 12 से 4 बजे वाली, इसको अवॉइड कैसे किया जाए उस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। रहा जैसे कि जो विभाग के जो हमारे कर्तव्य रहते हैं, विभाग मतलब जो भी आपदा प्रबंधन विभाग है, वो समस्त विभागों को क्या करें क्या नहीं करें हीट वेव के संबंध में एडवाइजरी जारी करता है कि आप इस तरह की कंडीशन में क्या करें। उसी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए समस्त विभाग, मेरा कहने का मतलब स्कूल एजुकेशन विभाग, जैसे स्कूल एजुकेशन विभाग ने इस बार अपना टाइम भी चेंज किया है, स्कूलों के अंदर स्कूल बेल से संबंधित घंटियां बजाई हैं जिसमें कि बच्चे पानी पी सके, उस कंडीशन में पानी पीने के लिए अलग से बेल का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा जो प्रार्थना सभाएं होती हैं उनकी, उनको भी उन्होंने उसके टाइम पीरियड को कम किया है, उसको किसी एक मतलब खुले स्थान पर न करके क्लासों में करवाने की व्यवस्था की है। स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए भी उन्होंने काम किया है कि जो विशेष जो जरूरत की जो बुक्स है वही बच्चा स्कूल में लेके आए। तो इतने सारे कार्य अलग अलग सेक्टर में किए जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि कोई भी चीज है, जैसे कि मध्यम वर्ग की बात करें या हम श्रमिक वर्ग की बात करें, वो श्रमिक वर्ग को भी क्योंकि जीवन अनमोल है, जो एक ही बार मिलता है, इस जीवन अनमोल को हमें बचाने के लिए हीट स्ट्रोक की स्थिति में हमें सबसे पहला यह है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिए जिससे कि शरीर शीतलन बना रहे। अगर फिर भी हमें कोई जरूरी हो तो हम उसके लिए हम नींबू पानी पिए, ORS के पैकेट्स लें, इस तरह की कंडीशंस ना पैदा हो कि हीट स्ट्रोक में वो कन्वर्ट हो जाए।
जी सर। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या आप ये घरेलू नुस्खे या परंपरागत चीजें जो हम लू से बचाव के लिए अपना सकते हैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे या ऐसी कोई अन्य जानकारी?
मेरा जो जितने भी वक्तव्य हैं मैं इनमें सबसे पहले वो चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हमें आसानी से मिल जाते हैं, जब क्योंकि तैयारी से ही हम बचाव कर सकते हैं। कोई भी चीज की तैयारी होती है उसी से ही हम बचाव कर सकते हैं। तो बचाव कैसे होगा? ये बचाव तब होगा जब हम अपने घर में नींबू हमारे पास हो, ORS के पैकेट्स हो, क्योंकि ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं। आपका अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो आप अपने सर के ऊपर ठंडे पानी से रुमाल लगा के इन्हें बार बार बदलते रहे
जी।
ये घरेलू नुस्खे। फिर भी अगर किसी मरीज की स्थिति ठीक नहीं है तो आप इसको लिए तुरंत अपने जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके दिखा सकते हैं। तो घरेलू उपाय उतने ही कारगर हैं जितने कारगर चिकित्सीय उपाय है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर नॉर्मल कंडीशन है तो आप घर में ही ठीक हो सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो भी आदमी ठीक हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि हम कैसा हो, तो घरेलू उपाय भी उतने ही कारगर। मैं जो आपके श्रोता हैं उन सबको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के द्वारा को जो अलर्ट मिलता है, हीट वेव से संबंधित अलर्ट हो या फॉरेस्ट फायर से संबंधित कोई अलर्ट हो, इस तरह के अलर्ट मिलते हैं तो आप उस दिन या उस परिस्थिति के लिए विशेष तौर से तैयार रहें, इग्नोर ना करें। क्योंकि ये अलर्ट्स को IMD के जो साइंटिस्ट होते हैं वो विभाग के पास भेजते हैं और विभाग ये इन जो अलर्ट्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे वो हीट वेव चलने की संभावना होती है वहां हम उनको भेजते हैं। पहली चीज, जब भी कभी आपको इस तरह के हीट वेव के संबंधित हो तो आप अपने साथ में पानी की बोतल साथ लेके जरूर चले। कि कई बार होता है कि हमें प्यास लग रही होती है लेकिन फिर भी हम पानी नहीं पीते हैं।
जी सर।
तो ये एक ध्यान में रखें। अगर फिर भी अगर हो सके तो अगर उस बोतल में आप थोड़ा सा नींबू और नमक नमक सिर्फ एक चुटकी डाल के और उसमें थोड़ा सा मीठा डाल के भी आप उसको सेवन कर सकते हैं। उससे कभी भी आपको किसी भी, आप दोपहर के वक्त अगर जा रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा वो लेते रहेंगे तो आपको कभी भी हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं होना पड़ेगा। और मेरा श्रोताओं से ये संबोधन है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी आपको इस तरह की कोई परेशानी हो, ज्यादा समस्या पैदा हो गई हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विभाग के जो टोल फ्री नंबर है 1070 और 112 पे कॉल करके आप किसी भी टाइप की मदद मिल सकती है आपको।
धन्यवाद सर, जिन्होंने इस कार्यक्रम में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी और लू के प्रभाव से बचने के बारे में हमें समझाया। हमारे साथियों को भी धन्यवाद जिन्होंने इस जानकारी को समझने और कार्यक्रम को सुनने में अपनी भूमिका निभाई। आप सभी से अनुरोध है कि आपदा और आपदा की तैयारी को समझने और दूसरों से साझा करने के लिए कृपया अपने फोन में सचेत ऐप को डाउनलोड कीजिए और सहायता के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कीजिए। यदि आपके समुदाय में भी लोग बाग लू से ग्रसित है तो कृपया कर ये लू से बचाव की जानकारी को उन तक पहुँचाए और ये कार्यक्रम उनको सुनाए। हम आशा करते हैं कि नए कार्यक्रम के साथ हम कुछ नई जानकारी आप लाएंगे। तब तक के लिए हमें सुनते रहिए अपने मोबाइल में जयपुर वाणी और मोबाइल वाणी के नंबर को इस्तेमाल करके। धन्यवाद।